हम सारे भाई बहनों को और सारे मित्रों को, दोस्तों को खैर मकदम करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये लॉकडाउन और पेंडेमिक जो चल रहा है, इसके होते हुए भी हम खुदावंद के वचन को, उसके कलाम को सुन सकते हैं। और जो आप हमारे को बहुत सारी दुआएं और आशीषें भेजते हैं और ग्रीटिंग भेजते हैं, उसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। और ऐसा हो सके कि खुदावंद हमारे को, हमारे साथ रहे। और अब मैं उसके कलाम से पढ़ना चाहूंगा, रोमियो उसका 15वां बाब और 4वीं आयत। रोमियो 15:4 से मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 15:4 में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गईं वो हमारी शिक्षा यानी तालीम के लिए लिखी गईं, और हम इस धीरज और पवित्र शास्त्र से प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता खुदावंद तुम्हें ये वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे खुदावन यीशु मसीह के पिता खुदावन खुदा की स्तुति करो। हम दुआ करें। हमारे प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे इस महान कलाम के लिए और आज जो तूने आशीष हमको दी कि आज तू हमसे बात करता है और अपने कलाम से हमसे बात करता है, हमें आशीष दे और सारे सुनने वालों पर भी तेरी बरकतें और आशीषें मिलें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। और अब भाई फ्रैंक और मैं भी, भाई फ्रैंक, आपको खुदावंद के नाम में आपको ग्रीटिंग्स देता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं कि हम इन मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं और सारे भाई और बहनों के साथ सारी दुनिया में जो बिखरे हुए हैं, और हम और संसारिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे बात करते हैं तो हमें ये पसंद नहीं कि इस तरीके से हम मिले, पर आजकल की जो हालात हैं, जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिसके अंदर के हम मुब्तिला हैं और हम घिरे हुए हैं, और फिर भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और हर एक हालात में भी हम खुदावंद का, प्रभु का शुक्र करते हैं। और हमें बहुत जगह से आज अभिनंदन और आई, ग्रीटिंग्स आई, और भाई हेमान रिंगन अब बाइकन वेदे से उन्होंने हमको ग्रीट किया, ब्रदर मिलो ने ग्रीट किए, भाई मिलो ने जर्मनी से, भाई लोतिका उन्हें ऑस्ट्रेलिया से, भाई चोबाबा उन्होंने जिम्बाब्वे से ग्रीट किया, भाई एंग्रे ब्रदर उन्होंने मॉन्ट्रियल से, बहुत सारे भाइयों ने हमको आज जो अलग अलग जगह पाए जाते हैं उन्होंने हमको अपनी ग्रीट किया, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया से, फ्रॉम कॉन्गो से, साउथ अफ्रीका से, हर जगह से हमको ग्रीटिंग्स आए और भाई लोग हमें ग्रीट करते हैं जो कि हमारे साथ खुश हैं और कि हम खुदावंद के इस पाक कलाम को सुन सकते हैं। और खास तौर पर और सभी भाइयों की तरफ से, साउथ अफ्रीका से भी बहुत सारी ग्रीटिंग्स हमको आई हैं, साउथ अमेरिका से ग्रीटिंग्स आई हैं, और सब जगह से हमको बहुत सारे अभिनंदन और ग्रीटिंग्स आए हैं। भाई जॉन ने बुकारेस्ट से भी हमको ग्रीटिंग भेजी, ब्रदर टाटी ने ब्रसल्स से ग्रीटिंग भेजी, सभी भाइयों की ग्रीटिंग्स हमको आई है। भाई सिसिल और बहुत सारे भाइयों की ग्रीटिंग्स हमको आई, अपनी बहुत सारी ग्रीटिंग्स और अभिनंदन हमको भेज रहे हैं। मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि इन महीनों में जो हमने जो पिछली जो हमारी जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो मार्च के पहले हफ्ते में हुई थी, और उसके बाद से ये संभव, ये पॉसिबल नहीं हो सक रहा कि हम एक साथ ऐसे मिल सकें जैसे पहले मिलते थे। पर फिर भी हम खुदावन का शुक्र करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि हमारे सामने ये मौका होता है कि हम इस वक्त भी और हर जगह पर जहाँ भी हम हैं और जहाँ पर भी हम पाए जाते हैं और जहाँ जहाँ पर हम हैं, अलग अलग जुबानों में अलग अलग जगह पर हम खुदावंद के कलाम को, इस वचन को सुन सकते हैं और इस प्रभु के वचन से हम बरकतें पा सकते हैं। और अब देखिए दिसंबर शुरू हो चुका, और मेरा ध्यान उन बातों की तरफ जा रहा है कि आज से 58 यानी 58 साल पहले क्या हुआ था। पहली दिसंबर से 5 दिसंबर तक 1962 में मैं वहां था, मैं जेफरसनविल में था, और 2 दिसंबर को मैंने ब्रैनम टैबरनेकल में प्रीच किया, खुदावंद का कलाम शेयर किया, वचन शेयर किया। उसके बाद मेरी बड़ी लंबी बातचीत ब्रदर ब्रैनम के साथ हुई, और मैं उम्मीद करता हूं भाई और बहनों कि आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ इस बात को समझें कि मेरे साथ क्या बीता। आप जानते हैं, आपने शायद पहले भी सुना हो कि वहां के यूरोप में उस वक्त क्या हुआ था, जर्मनी में उस वक्त क्या हुआ। 1961 की बात है, और बर्लिन में वो दीवार बनाई गई थी डिवाइड करने के लिए, और अमेरिकन और रशियन टैंक्स दोनों साइड में थे, और ब्रैंडनबर्ग गेट पर यह हुआ, और उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और इस वक्त में 2 अप्रैल 1962 को खुदावंत खुदा ने उसने मुझे एक हिदायत दी, मुझे इंस्ट्रक्शन दी, और उसने कहा कि हे मेरे सेवक, हे मेरे खिदमतगार, और अब तुझे मैं अलग अलग दूर दूर देशों में भेजूंगा, मुल्कों में भेजूंगा, और तेरा वक्त इस मुल्क से, इस शहर से अब जल्दी तुझे कुछ करना होगा, तुझे जाना होगा। और कहा गया कि मैंने क्या किया कि एक बड़े अकाल की इंतजार में बहुत सारा खाने पीने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और तब तू लोगों के बीच में खड़ा होगा जब ये जो 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 आत्मिक भोजन। मुझे ये उस वक्त पता ही नहीं चला कि इसका क्या मतलब था, इस अकाल का और इस और लोगों के बीच में खड़ा होना है और खुदावन के कलाम को बांटना है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया उस वक्त पूरी तरीके से। और ये मुझे बाद में पता लगा जो भाई ब्रैनम ने मुझे बताया कि ये उस रूहानी खुराक के बारे में बात हो रही थी, जिस्मानी खाने और जिस्मानी खुराक के बारे में खुदावंद मुझसे नहीं कह रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई फ्रैंक, आप सोच रहे थे कि एक संसारिक रूप से यानी जिस्मानी तौर पे एक अकाल आने वाला है, पर बात यह है आपने इसीलिए सारा सामान जो खाने पीने का सामान था इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर बात यह है कि खुदावन जो है वो अपने कलाम के सुनने के अकाल के बारे में बात कर रहा है, जैसे अमोस की किताब में लिखा है, और जो जो के जो खुराक तुम्हें इकट्ठी करनी है वो ये है, वो आत्मिक खुराक है, रूहानी खुराक है जो इस वक्त के लिए है। ये वो वादा किया हुआ कलाम है, वचन है, और ये सारा जो वचन है भाई ब्रैनम ने बोला कि ये टेप्स पर रिकॉर्डेड है, और इस और अभी इंतजार करें, अभी इंतजार करें कि जब और भी अभी और भी कलाम और भी वचन दिया जाना है, इंतजार करें जब तक कि सारा इकट्ठा ना हो जाए। भाई और बहनों, मैं कहना चाह रहा हूं ये मेरे लिए इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है? मैं सोचता हूं कि क्या आप इस बात को समझ सकते हैं। तब भाई ब्रैनम ने कहा, उन्होंने फिर मुझे हिदायत दी और मुझे कहा, सलाह दी, क्योंकि खुदावन ने उनको रिवील किया, उनको मुकाशफा दिया और उनको बताया, प्रकाशन दिया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, विस्तार में नहीं जा सकता, पर खुदावन को इस बात के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने नबी को और अपने भविष्यवक्ता को हमारे पास भेजा कि हमारे पास वो सारी खबर और सारा वचन और सारा कलाम अप टू डेट बता दे, कि वो कलाम जो इस वक्त के लिए, जो इस समय के लिए जो वचन है वो हमें बता दे, हमें मिल जाए। और आज हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों से हम पढ़ेंगे, और वहां से कुछ आए थे, चंद आए थे, हम वहां से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, और उसके बाद उनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका पांचवां बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों चौथे बाब के अंदर 13 आयत से लेकर पौलुस जो है, और वो प्रभु के दूसरी आमद के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से बता रहा है, और फिर मैं सभी भाइयों से ये पूछना चाहता हूं, सभी अलग अलग जुबानों में इस बात को वो समझें। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आप देखिए, अंग्रेजी की बाइबल में शाउट वर्ड एक लिखा है कि खुदावन जो है वो बड़े ऊंची ऊंची शाउट यानी ऊंची आवाज से चिल्ला के जाहिर होगा। ये एक बड़ी ऊंची आवाज है, बहुत ऊंचा शब्द है। अगर कोई बहुत जोर जोर से बोल रहा है तो हम उसे कहते हैं इतना ऊंचा मत बोलिए, पर जर्मन भाषा में जो इसको शाउट नहीं कहते, इसको बोलते हैं, शाउट को चिल्लाना नहीं बोलते जर्मन भाषा में, इसको बोलते हैं जगाने के लिए जो पुकार की जाती है, जो ललकार की जाती है, उसे बोलते हैं शाउट। इसलिए मैं बड़ा खुश हूं कि बाइबल के जो ट्रांसलेशन में, अनुवाद में जो खास बात है वो हमको समझाई गई कि सही अनुवाद किस, सही ट्रांसलेशन, सही तर्जुमा किस तरीके से हो सकता है। पर जो वेकअप कॉल है यानी कि नींद से उठाने की जो ललकार है, जो पुकार है, उसके बारे में यहां जिक्र है। सिर्फ ये नहीं कि ऊंची आवाज में चिल्लाने से जिक्र है, और जो प्रधान दूत यानी जो बड़े फरिश्ते की आवाज सुनाई देगी और खुदावन की तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु जो है वो आसमान से उतरेगा, वहां पर कोई महीना और साल जो हफ्ता नहीं है, ये कोई एक लंबा अरसा नहीं होगा इस कार्यवाही में, ये सारा कुछ उसी वक्त तत्काल उसी वक्त एक ही बार में होगा। और हम खुदावंत का शुक्र करते हैं कि हमारे को एक इतने अच्छे तर्जुमे की और अनुवाद और ट्रांसलेशन हमको मिला है, क्योंकि जो मसीह में सोते हैं वो उनका पुनरुत्थान होगा, वो जी उठेंगे, ये उस पुकार से जी उठेंगे जो उस वक्त खुदावंद करेगा जब वो उतरेगा। और हम जो जिंदा रहेंगे, हम में से जो जिंदा रहेंगे वो हम बदल जाएंगे। अब हम देखिए उस बात पर आते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका पांचवां बाब, और यहां देखिए कितनी अद्भुत बातें कही गई हैं। पर हे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि वक्तों और कालों के बारे में तुम्हें कुछ लिखा जाए, हमारे पास वो बातें लिखी हुई हैं जो कि खत पौलुस ने लिखे। अब कोई और खत लिखे जाने की और पढ़े जाने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही बता दिया गया है। पौलुस कह रहा है पहली आयत में कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ और बताया जाए या कुछ और लिखा जाए, यानी कि लिखा जा चुका है। मैं भाइयों से कहना चाहता हूं कि बदबोग, अब देखिए भाई बोग जो है वो दूसरी आयत पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बताएं, वो भाई बोर्ग पढ़ेंगे दूसरी आयत और तीसरी आयत, और मैं चाहूंगा कि ये आयतें पढ़ी जाएं, पहली आयत दूसरी आयत, क्योंकि तुम आप ही ठीक से अच्छी तरह से जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही खुदावन का दिन भी आने वाला है। यहां पर वो बता रहा है कि हमारे पास इस चीज का वादा है, खुदावंद के मुख से हमको ये वादा है, और मलाकाई में लिखा है कि जैसे इससे पहले कि खुदावंद का दिन आए मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा जो कि सारी चीजों को बहाल करेगा, वापस करेगा, रिस्टोर करेगा, और वो जो बच्चों के मन को, जो पितरों के मन यानी बाप दादों के मन, पुरखों के मन की तरफ लेकर जाएगा। जब हम एक मजमून को, एक कलाम को दूसरे मजमून और कलाम से मिलाते हैं बाइबल में, तब हमको पता लगता है, तो हम अलग अलग हवालों में, अलग अलग रेफरेंसेस में जाते हैं, अलग अलग आयतों में जाते हैं, जिससे कि हम खुदावंद के वचन को, उसके कलाम को उसी तरीके से प्लेस कर पाए जैसे कि वो है। और देखिए अब हम, और तुम जानते हो दूसरी आयत कि खुदावंद का जो दिन है ऐसे आता है जैसे कि रात को चोर आता है, ये दूसरी आयत है। तीसरी आयत, और जब वो कहेंगे कि सब कुछ बहुत भला है, सब कुछ बहुत सही है और कोई दिक्कत नहीं है और कोई डरने की बात नहीं है, उसी वक्त एकाएक उनके ऊपर विनाश यानी के बर्बादी आ पड़ेगी, जैसे के एक हामला औरत, गर्भवती औरत के ऊपर दर्द और पीड़ा आ जाती है और वो किसी भी हालत में बचेंगे नहीं। और देखिए जब वो ये कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक ठाक है और सुलह है और शांति है, अब देखिए मिडिल ईस्ट में, सारी दुनिया में ये बात हो रही है कि इज़राइल के साथ और उसके साथ, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए जो शांति बहाल करने की जो बात है, सुलह बहाल करने की जो बात चल रही है, जो इस हालात से गुजर रहे हैं, इसमें एक एक ये रशिया या अमेरिका में कोई शांति बहाल करने की बात या सुलह बहाल करने की बात नहीं हो रही। इसका ताल्लुक ये जो तरीका है सुलह का, सलामती का, ये पाक कलाम जो बता रहा है, पाक कलाम इसकी गवाही दे रहा है। ये जो तरीका है ये जो है इसराइल के साथ होगा, और जब वो कहेंगे कि अब सुलह और सलामती है, तब अचानक उनके ऊपर विनाश आ जाएगा, बर्बादी आ जाएगी। और ये जो कहेंगे कि भाई अब सुलह हो गई, शांति हो गई, बहाली हो गई, नहीं, ये एक तरीके से अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक झूठा बयान होगा, झूठा बयान साबित होगा, क्योंकि असल में कोई शांति और बहाली नहीं आने वाली, सिर्फ ये सोच होगी। अब हम पढ़ते हैं, हम अगली आयत पढ़ते हैं, पर हे भाइयों, चौथी आयत, तुम अंधेरे में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की तरह आ पड़े। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। और वो कितने तसल्ली की बात कह रहा है पौलुस, हे भाइयों और हे बहनों, जो इस बात को सुन रहे हो, तुम उस अंधेरे में नहीं हो, उस डार्कनेस में नहीं हो, उस तारीखी में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खुदावन का कलाम जो है वो नाजिल हो चुका है, प्रकट हो चुका है, और तुम उस पर ईमान भी रखते हो, विश्वास भी रखते हो, और ये तुम्हारे लिए रोशनी बन चुकी है। जब शाम का वक्त आ रहा है तो शाम के वक्त के आने से पहले जो उजाला होता है वो तुम्हें मिल चुका है, इवनिंग टाइम की लाइट मिल चुकी है। और इस वक्त में, खास इसी मौके पर, खुदावन ने अपने नबी को भेजा, और जिसको एलिया की खिदमत गारी दी गई, सेवा दी गई, और उसने लोगों को इकट्ठा किया, और उसने कर्मल के पहाड़ पर, और उसने लोगों के बीच में कहा, कब तक तुम दोनों साइडों में छलांग लगाते रहोगे, जब तक दोनों साइडों पर चलते रहोगे, दोनों तरीकों में चलते रहोगे। और एलिया के बारे में जो हम पढ़ते हैं, एलिया नबी ने 12 पत्थर इकट्ठे किए पहाड़ पर, और वहां पर उसने बलिदान चढ़ाया, कुर्बानी चढ़ाई, और खुदावन ने उस चीज को कामिल किया, उसको विंडिकेट किया, प्रकट किया आग दे करके। इसी प्रकार से आज भी भाई ब्रनम ने इस वक्त में, इस समय में, उसने जो प्रभु की वेदी है, प्रभु का जो अल्टर है, खुदावन का जो अल्टर है, वो 12 शागिर्दों की नींव पर जो खड़ा हुआ है, ये 12 पत्थरों की तरह से है, और गलतियों एक में वो कहता है कि, और इसीलिए पौलुस ने कहा कि अगर कोई दूसरा समाचार या कोई दूसरा कलाम या पैगाम लाकर तुम्हें दे, तो वो उस पर कर्ष आ जाए, उस पर वो श्रापित हो जाए, उस पर लानत आ जाए। खुदावन ने हमको अपना अनुग्रह दिया, अपनी दया हम पर दिखाई, और लोग कहते हैं, जो एडवेंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि डे ऑफ द लॉर्ड, यानी खुदावंद का जो दिन है वो सबत का दिन है। खुदावंद ने अपने नबी को भेजा, और आखिरी वक्तों में, और इससे पहले कि खुदावंद का वो दिन आ जाए जिसके बारे में कलाम में लिखा है, और सूरज काला हो जाए, अंधेरा हो जाए, और चांद जो है वो खून के जैसा लाल हो जाए, और आसमान से सितारे गिरने शुरू हो जाएं, और खुदावन ने पहले से बता दिया और ये आखिरी वक्त की वो निशानियां हैं जो खुदावन ने हमें बता दिया, और ये खुदावन के जो बंदे हैं वो इस चीज से अचंभे में नहीं आते, वो इस चीज से नहीं घबराते। और ये बड़े पक्के तरीके से मैं कह सकता हूं, पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि मेरे भाई और बहनों और मेरी बहनों, जो आज आप दुनिया में सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, ये सारा मैसेज, ये कलाम जो आप सुन रहे हैं इस वक्त के लिए, आप अंधेरे में नहीं हैं, आप तारीकी में नहीं हैं, क्यों उनकी तरह नहीं है जिनके ऊपर कोई उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं, पर आप तो लाइट में हैं, आप प्रकाश में हैं, आप उस रोशनी में हैं जो इस वक्त के लिए कलाम के द्वारा हम पर नाजिल करी गई, प्रकट करी गई है। और देखिए मलाकी नबी में जो कुछ कहा गया और ये बताया गया, तब हम देखेंगे कि उसमें फर्क क्या है, जो खुदावन की सेवा करते हैं और जो खुदावन की सेवा नहीं करते उनमें क्या फर्क है। और जो इनके बारे में और जानना चाहता है वो पढ़ सकता है, वो मत्ती 15 में पढ़ सकता है और 8 और 9 आयत में पढ़ सकता है, जहां प्रभु ने उस वक्त कहा, खुदावन ने कहा, और आज भी वो कह रहा है, खुदावन ने कहा कि वो बेकार में यानी फालतू में वेन वर्शिप करते हैं, मेरी उस तरीके से आराधना और परस्तिश करते हैं जो कबूल करने के लायक नहीं है। उनके पास अपनी अपनी तालीम और शिक्षाएं हैं जो मेरे कलाम के अनुसार, मेरे कलाम के मुताबिक नहीं है। और वो उन सारी बातों पर विश्वास करते हैं जो वो सोचते हैं, वो उनके उनके विश्वास के दिन जो नींव डाले जाने, जो उनका विश्वास है उसकी नींव डाले जाने के हिसाब से वो विश्वास करते हैं, पर हमारा जो विश्वास है उसकी जो नींव कब पड़ी थी, जबकि पेंतिकुस का दिन था और खुदावन का रूह, परमेश्वर का आत्मा लोगों पर उतरा ऊपर वाले कमरे में, और वहां पर छुटकारे का काम हुआ, और जो नए अधनामे का खून था, नए नियम का जो लहू था वो मिला और वो लगाया गया, और गुनाहों की माफी और अनुग्रह और सारी बरकतें और पाक रूह का मिलना हुआ। जब विश्वासी लोग इकट्ठे हुए तब पाक रूह पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और प्रभु ने उस नए नियम को, उस नए वादा को, उस नए अहदनामे को उनके ऊपर नाजिल किया, और उसने कहा कि जो अधलोक यानी नरक के फाटक भी उसके ऊपर सामर्थ्य या कुवत नहीं कर पाएंगे, और वो अपनी जो दुल्हन की जो कलीसिया है, जो दुल्हन है, उसके काम को खुदावन पूरा कामिल करता है। और इस आखिरी मैसेज के द्वारा, इस आखिरी कलाम के द्वारा, जैसे भाई ब्रनम ने कहा, उन्होंने कहा और मुझे बताया गया कि 11 जून 1933 को जैसे कि यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था कि वो खुदावन की पहली आमद के लिए तैयारी बख्शे, उसी तरीके से तुमको जो संदेश, तुमको जो कलाम या मैसेज दिया गया है वो खुदावन की दूसरी आमद के लिए, दूसरे आगमन के लिए तैयारी कराएगा। और हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जो भी भाई लोग, वो भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ये बात सच है और बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो आखिरी मौके का जो कलाम है, संदेश है, ये सारे संसार में जा चुका है, ये भेजा जा चुका है, जैसे कि खुदावन ने कहा था, उसी और उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से वैसा हुआ। एक बार हम फिर और दिसंबर के महीने में वापस आते हैं, जो मैं बता रहा था पहले, पहली दूसरे तीसरे चौथे और पांच दिसंबर को क्या हुआ 1962 में। उसके बाद 24 तारीख आई, और देखिए 24 तारीख आई मेरे लिए, ये मेरे लिए बिल्कुल बर्दाश्त से काबिल ये बात नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ, ये मैं सोच नहीं सकता था। कितनी बार ब्रदर ब्रैनम ने कहा था, उन्होंने कितनी बारी कहा था, उन्होंने कई बारी इसकी तरफ इशारा किया था, उन्होंने एक बहुत बड़े टेंट खैमे और तंबू के बारे में बताया था, और जैसे कि वहां एक टेंट के बारे में, तंबू के बारे में भाई ब्रैनम ने कई बारी जिक्र किया था, और वो कह रहे थे मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि खुदावन यूं फरमाता है, और ऐसा हुआ, ऐसा होना है। पर भाई ब्रैनम जो थे एक नबी थे, उन्होंने ये चीजें देखी कि जो होगा, और वो इसका इंतजार कर रहे थे, और इसका इंतजार कर रहे थे, और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे। पर इसी बीच में खुदावन ने उनको बुला लिया। मैंने देखा कि वो किस तरीके से एक बादल में उठा लिए गए, और इस दर्शन में, यानी के इस मुकाशफा में, मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई ब्रैनम आप तो मनुष्य के पुत्र नहीं हैं, आप तो सन ऑफ गॉड नहीं हैं, पर मैं ऐसा क्यों देख रहा हूं। 1965 में, और ये बात रात को 10:30 और 11 के बीच में मुझे दिखाई दी, और यूरोपियन टाइम के 11:45 के करीब वो खुदावन में उठा लिए गए, और मैंने उनको उस विजन में, उस महिमा में जाते हुए देखा। और वहां लिखिए, वहां पर अब देखिए 19 जनवरी का वक्त आता है, 1966 में, अब वो वक्त आता है 19 जनवरी का, और एक बड़ी अद्भुत बात होती है, बड़ी खास बात होती है, और मैं कह सकता हूं, और बहुत सारी वो अलौकिक चीजें, सुपर नेचुरल चीजें जो मेरे साथ गुजरी और मैंने देखी, मैंने उनका वक्त, मैंने हर चीज नोट करके रखा है, मैं हर एक को बता भी सकता हूं कि इस वक्त में, इस घड़ी में क्या क्या हुआ। 19 जनवरी 1966 को, और आत्मा में, यानी रूह में होकर के एक बहुत बड़ी जमात मैंने देखी। एक लकड़ी की बनी हुई बिल्डिंग थी, और उसमें से बालकनी में ऊपर के कमरे में एक सीढ़ी जा रही थी, और मैं ऊपर गया, उस लकड़ी की सीढ़ी से गया, मैं वहां बैठा, और मैं उस बालकनी में बैठ गया, और वहां से ऊपर से मैं देख रहा, और वहां मैं देख रहा था कि वहां पर जो उस बालकनी के अलावा सारा कुछ जो मैं नीचे देख रहा था, वो एक तंबू की शक्ल में था, एक खैमे की शक्ल में था, एक टेंट की शक्ल में था, एक बहुत बड़ा तंबू दिख रहा था। मैं क्या बताऊं आपको, और उसके कुछ लम्हों में ही, और वहां पर बहुत सारी जमात के लोग आए और मैं देख रहा था कि वहां पर बहुत लोग बैठे हुए थे और उनके और जो वहां काम करने वाले भाई थे उनके उनके ऊपर हाथ पर एक पटका बंधा हुआ था और लोग उनको पहचान सकते थे। फिर मैंने देखा, फिर मुझे एक आवाज, जोर की आवाज आई, ब्रदर फ्रैंक, भाई फ्रैंक, आपका वक्त अब आ चुका है और अब नीचे आ जाओ और फिर इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ जहां पर जहां से भाई ब्रैनम प्रचार करते थे, वहां पर मैं आकर खड़ा हो जाऊं और उस जगह को उस जगह पर आ जाऊं। तब उस आवाज ने मुझसे कहा और लोगों से बात कर और इस भीड़ से बात करो कि खुदावन के आने का वक्त बहुत ही करीब है। और फिर मैंने उस कलाम का प्रचार करना शुरू किया उस तंबू में जो लोग थे उन पर। खुदावन जो है वो जिस्मानी तौर पे कई ऐसे एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करता है, ऐसे ऐसे निशान इस्तेमाल करता है अपने कलाम को समझाने के लिए। जो मैसेज भाई ब्रैनम ने जो मैसेज प्रचार किया, जो कलाम प्रचार किया, वो तो अमेरिकन थे हमें पता है, पर ये जो कलाम है, ये जो कलाम है, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था, ये तो सारे संसार के एक एक छोर से कोने कोने के लिए ये कलाम था, सारे खारे सारी कायनात के लिए कलाम था। और खुदा का जो खुदावन का जो कलाम है, ये वचन है जो नबी के दुआया, ये तो सारी दुनिया के लिए, ये तो दुनिया के कोने कोने छोर छोर के लिए है, सब लोगों के लिए है, सब जुबान के लोगों के लिए है। आप देखिए इस बात को। हमने पहला थिसलुनीकियों पांचवें बाब की पहली आयत में पढ़ा, उसने कहा कि हे भाइयों, चौथी आयत में कह रहा है, भाई तुम तो तारीकी के यानी अंधकार में नहीं हो कि तुम पर यह दिन चोर की तरह आ पड़े, क्योंकि हम तो ज्योति की संतान हैं, हम तो रोशनी के फर्जंद हैं और दिन की संतान हैं, हम रात के नहीं हैं और ना हम अंधेरे के हैं। हमने तो वो उस पुकार को, उस बुलाहट को सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और अपने आप को अलग कर लो और कोई भी अशुद्ध यानी अनहोली चीज या खराब चीज को मत छुओ। देखिए मुकाशफा की किताब उसके 18वें बाब में भी वो कह रहा है, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। और इसी तरीके से और जिस तरीके से खुदावन ने हमारी समझ को खोला अपने कलाम को समझाने के लिए और अपना अनुग्रह, अपना ग्रेस हमको दिया, मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत खुदावन ने दे दी है, इनहेरिटेंस दे दी है और इतना सारा मुकाशफा हमको अपने कलाम का दे दिया है, इतना ज्यादा मुकाशफा, इतना क्लियर मुकाशफा खुदावन के कलाम का इस सरजमीन पर कभी नहीं था। और भाई ब्रैनम ने कहा, उन्होंने सारे के सारे हवाले हमको दिए जिससे कि हमें पुराना और नए अहदनामे को मिलाकर इस बात को समझ में आ जाए और सारी दुनिया के लोगों पर ये बात समझ में आए कि इस संदेश का, इस मैसेज का क्या मतलब है। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 4 में रैप्चर के बारे में लिखा है और कि क्या होता है उस वक्त, क्या होता है, ये पहला थिस्सलुनीकियों 4 में लिखा है। उसके बाद पौलुस कहता है और पौलुस कहता है कि मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये खुदावंद का कलाम है। और ये खुदावंद की तरफ से ये मैसेज पहुंचा, खुदावंद के तरफ से ये कलाम हमको इन हवालों में मिला। ये खुदावंद था। उस ललकार और वॉइस ऑफ आर्कएंजल और तुरही फूंके जाने का जो आलम है, ये खुदावंद की आमद है। तब हम जो उस वक्त जिंदा होंगे, हम में से जो जिंदा रहेंगे, वो बादलों पर वो बदल जाएंगे और बादलों पे उठा लिए जाएंगे उनके साथ जो मुर्दों में से जी उठते हैं, और खुदावंद के साथ हम हवा में बादलों में मिलेंगे, और हम उस मैरिज सफर में, उस प्रभु भोज में हम शामिल हो जाएंगे, उस दावत में शामिल हो जाएंगे। और मेरे भाइयों जो जो खिदमतगारी करते हैं, आप प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ, पहला थिसलोनिकियों 4 को आप सही तरीके से समझें। जो जो पहला जो संदेश है, जो कलाम है खुदावन, पहले वो मैसेज जो है, जो मैथ्यू 25 में लिखा गया है, मत्ती 25 में लिखा गया है कि देखो दूल्हा आता है और बाहर जाओ और उसको मिलने के लिए जाओ, उससे मिलन करने के लिए के जाओ, और इस मैसेज और खुदावन और ये जो संदेश है, ये कुरिन्थियों के कलाम को मिलाता है और कहता है मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। ये वो बुलाहट है कि उनमें से निकल आओ, बाहर आ जाओ। और ये इतने सालों से ये मैसेज जो है चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, लोगों को पहुंच रहा है, पर अब दिन वो आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है जबकि खुदावंद हमको हमारे घर ले जाएगा, हमारे मुकाम पर ले जाएगा। और ये देखिए जो के जो पाक कलाम क्या कहता है कि दो चक्की पीस रहे होंगे, दो खेतों में काम कर रहे होंगे, और इसका मतलब ये है कि पूरे जहान में, पूरे संसार में कहीं दिन होगा और कहीं रात होगा, पर उसी समय पर, अकस्मात उसी समय पर, यकायक उसी वक्त में, चाहे कहीं दिन होगा या कहीं रात होगा, पर यकायक ये हो जाएगा सारे जहान में, सारे संसार में एक ही वक्त में हो जाएगा। अब देखिए मैं इस बात को की समरी, इसका निचोड़ बताना चाहता हूं कि 5वें बाब में मेरे भाइयों और मेरे बहनों, पौलुस कह रहा है कि मुझे इस चीज की तुम्हें अब जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें और कुछ लिखूं, क्योंकि तुम तो ज्योति की संतान हो, तुम तो रोशनी के फरसंद हो, रोशनी की संतान हो। अब ये देखिए पाक कलाम में ये बातें हमें बताई जा रही हैं, हमारे को सारी चीजें बता दी गई हैं, हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं। इसलिए हम अंधेरे में नहीं, तारीकी में नहीं रह रहे, जैसा कि भाई ब्रनम ने कहा था कि शाम के वक्त एक बारी फिर से उजाला होगा, फिर से एक बारी तारीकी के बीच में रोशनी की किरण दिखाई देगी, और वो सारी बातें जो हमारे लिए जरूरी हैं, और जो उसके सेवक, उसके मदद, उसके नबी के द्वारा जो हमारे ऊपर वो बातें हमको प्रचार करी गई, और खुदावन की जो मिस्ट्री थी, कलाम की जो मिस्ट्री थी, जो भेद थे, वो हमारे ऊपर नाजिल कर दिए गए, सारा का सारा भेद हमारे ऊपर नाजिल कर दिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हों, और इस बात को आप हासिल करें और पालें। और खुदावन ने इस तरीके से अपने नबी को भेजा कि हमको उसने सारे के सारे कलाम के वो हवाले, कलाम की बातें हमको समझा दी, बता दी कि ये जो अंत समय का जो संदेश है, जो मैसेज है, जो कलाम है, वो हमें मिल जाए। उसने अपने नबी को वापस महिमा में तो बुला लिया, पर संदेश यानी मैसेज जो है वो आज हमारे साथ है और खुदावन ने सारी चीजें ऑलरेडी मुकाशफा कर दी, बता दी, समझा दी। इस मैसेज से हम खुदावन का बहुत शुक्र करते हैं कि खुदावन का जो सारा प्रोग्राम है वो आज हम इस बात को समझ सकते हैं। एक बार फिर से अपने दिल में इस बात को बिठा लें, ये वो दिन है जो कि खुदावन ने बनाया है कि हम उसकी दुल्हन होने के नाते, बचाए गए लोगों के जमात होने के नाते, और हम सिद्ध किए जाएं, पाक तरीन किए जाएं और कामिल किए जाएं खुदावन में, और हम पाक रूह से हम पर मोहर की गई है और ये मोहर उस अंत के वक्त तक के लिए कि जब तक के प्रभु नहीं आता, हमारे ऊपर ये मोहर की गई है पाक रूह की। एक बार और दरखास्त है, खुदावन ने चाहा अगली मीटिंग में हम इस बारे में बात करेंगे कि ये कितना जरूरी है कि हम के सिर्फ इस शिक्षा को ही हासिल करें या टीचिंग को ही हासिल करें, ये तालीम को हासिल करें, पर सिर्फ तालीम को हासिल करना ही नहीं बल्कि खुदावंद का जो एक्सपीरियंस है, खुदावंद का जो अनुभव है, उसको हम अपनी जिंदगियों के अंदर शख्सी तौर पर हम उसको अपने शख्सी तौर पर उस चीज को देख सकें, उस चलन को देख सकें, और जिस तरीके से हम इस वचन को, खुदा के कलाम को, जिस तरीके से ये कलाम जो है बेदाग है, उसी तरीके से जो उद्धार पाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वो भी इसी तरीके से बेदाग बन जाएं खुदावन के सामने और खुदावन पर ईमान रखें, और हम अपने अंदर पूरी की पूरी वो तैयारी कर पाएंगे, और वो पहली और आखिरी बारिश जो जिसके बारे में जिक्र है वो हम पर नाजिल होगी, ये तब तक नहीं होगा जब तक खुदावन हमको अपना रहम, अपना फजल ना दे, जिससे कि हम उसकी उस आवाज को सुन सकें, उसके पाक करीम कलाम को अपने ऊपर नाजिल कर सकें खुदावन के पाक नाम में। मैं आप सब के लिए मांग लेता हूं और अब हम दुआ करेंगे। हाय प्यारे खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम अपने दिलों से, हम अपने पूरे रूह से हम तेरा शुक्र करते हैं, और हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने हमें बुला लिया, तूने हमें अपने पास अपने कलाम में रखा, और हम उस तारीकी से निकलकर उस रोशनी में चलें, उस कलाम में चलें जिसका तूने हम पर मुकाशफा किया और प्रकाशन किया, और तेरे उन वादों पर चल सकें जो कि तूने एलिया नबी के सेवकाई में हमको, हमारे पास अपना नबी भेजा जिसने सारी चीजों को बहाल किया, रिस्टोर किया, और हम ये विश्वास करते हैं, ईमान करते हैं कि ये जो मैसेज है, जो कलाम है, दुनिया के छोर छोर तक जा रहा है। हम तेरा बहुत शुक्र करते हैं, तू अपने काम को अपनी कलीसिया में पूरा करेगा। हम तेरा बहुत शुक्र गुजार हैं, और खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम इस बात को मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन।
Sagst du sie immer aufs Neue, sag sie wieder lieb, wunderbar lieb.
Tell of his love.
Sage doch ohne Verweilen, alle zu Jesu zu eilen.
Run to Jesus.
Sag sie wieder lieb.
Tell how he loves you. How wonderfully he loves you. Say it until all have heard it and have come to the Savior.
Sag's den gebrochenen Herzen.
Say it to the brokenhearted.
Lass nicht die Irrenden gehen.
Let not those go into error.
Du bist dem Wanderer am Wege. Leb es, dass alle es sehen.
May all see it.
Sag's, wie er liebt.
Say it, how he loves you.
Wunderbar.
How he wonderfully loves you.
Lade doch ohne Verweilen.
Invite all to come to Jesus. Proclaim how he loves you. How wonderfully he loves you. Say it until all have heard it and have come to the Savior.